आखिर वहाँ सिविलियंस सब हो गए, उस वक्त शायद हम दो या तीन लोग सिविलियंस थे, बाकी सब फौजी अफसर रहते थे वहाँ। तो एक फौजी अफसर एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे कि आप अल्लाह वाले लोगों के पास बहुत जाते हैं। तो एक आदमी मुझे मिला है वहाँ, कमाल का आदमी। तो मैंने कहा भाई मिलवा दें आप मुझे। कहने लगे इजाज़त तुमसे लेनी पड़ेगी, उसके बगैर आप जा नहीं पाएंगे। इजाज़त ले ली, खैर तीन चार रोज के बाद आए घर, कहने लगे जी इजाज़त मिल गई आपकी, चलिए। तो हम गए तो वो बड़े शासा थे, तो वहाँ कमरा उनका एग्जैक्टली जिस सोफे पे आप बैठे हैं उसकी लेंथ के बराबर और चौड़ाई उसकी इससे दुगनी। वो कमरा उनका ड्राइंग रूम भी था, लाउंज भी था, बेडरूम भी था, किचन भी उसी के अंदर, स्टोर भी उसी के अंदर। तो मिले शाह गए तो इन्होंने डराया बहुत था कि बहुत जलाली आदमी हैं और बात करने नहीं देते फालतू किसी को अपने साथ। मुझे हैरत हुई, बड़ी मोहब्बत से मिले। तो ये भी नहीं पूछा क्यों आए, क्या करने आए। तो छूटते ही मुझको कहने लगे कि आप ये लफ्ज पढ़ लिया। अब हम तो अंग्रेजी तालीम के मारे हुए थे और लंबे लंबे वज़ाइफ पढ़ने के आदी थे। तो वो जो उन्होंने पढ़ने को बताया तो मैं अब सोचता रहा कि ये लफ्ज क्या है जो उसको पढ़ूंगा। कहने लगे बस एक एहतियात कर लें कि इसके बाद दुआ ना मांगे आप, ठीक है, नहीं मांगते। तो वो मैं उठने लगा तो मुझे कहने लगे बैठ जाइए आप जो कुछ पढ़ते हैं छोड़ दीजिए। मैं तो 40-42 वज़ाइफ सुबह पढ़ रहा था, 40-42 वज़ाइफ रात को पढ़ता था, और मैं पढ़ता चला आ रहा था एक ज़माने से। तो अब छोड़ने को कैसे दिल चाहे। तो मैंने जो जो मैं पढ़ता था वज़ाइफ उनसे कहा कि ये भी छोड़ दूँ, ये भी छोड़ दूँ, ये भी छोड़ दूँ। हाँ छोड़ दें। मैंने कहा जी पढ़ूँ क्या, ये जो लफ्ज़ कहा है। मैंने कहा जी ये तो ज़्यादा से ज़्यादा पाँचों वक्त जो अगर मैं वजू करूँ, क्योंकि नहीं करता मैं तो एक बार सुबह वजू करूँगा, बहुत ही ज़रूरत पड़ गई तो रात को करूँगा, वरना तो चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह काम। तो वर्चुअली 24 घंटे में एक वजू है मेरा, तो उस पर ज़्यादा चार बार पढ़ लूँगा या पांच बार पढ़ लूँगा, ये तो और क्या होगा इससे ज़्यादा। कहने बहुत है यही, अगर पूरे दिन में आप वो सिंगल वर्ड, जैसे मैं मिसाल दे दूं आपको, जेड है। तो कहने लगे वो पढ़ना, वो उसका तरीका बता सकता हूँ, लफ्ज नहीं बताऊंगा मैं पढ़ने को। तो वो ये था कि जब वजू कर रहे हैं तो आप हाथ धो रहे हैं, तो हाथ धोने का तरीका यूं है, वो ऐसे नहीं जैसे हम धोते हैं अंग्रेजी तरीके से बनी, वो यूं धोना था। तो यूं जब आप हाथ धो रहे हैं वजू के दौरान, बस उसी वक्त पढ़ना, उसके बाद नहीं पढ़ना। मैंने कहा चार या पांच बार के बहुत है, यही बहुत है। एक्चुअली कौन सा लफ्ज है ये, क्या है ये। तो तीन दिन या चार दिन तो मैंने कर लिया सबर, पढ़ता रहा। चौथे दिन हमने कहा यार देखो तो दुआ मांग के होगा क्या। तो दुआ मांग ली आराम से। दुआ मांगने की देर थी, नमाज के लिए खड़ा हुआ तो मेरा ख्याल नमाज मुकम्मल कर ली, तो दुआ मांग रहा था शरीर। तो दुआ के दौरान ऐसे हाथ उठा के दुआ मांग रहा था मैं अल्लाह ताला से। तो मैंने हाथों के अंदर इस तरह से फिल्म चलती हुई देखी, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। उसका कुछ हिस्सा मिलता था मकबरा जहांगीर से और कुछ मिलता था शालीमार गार्डन से। तो मैंने कहा शायद ख्याल आया है मुझे, बचपन में गया था शालीमार गार्डन देख, मकबरा जहांगीर भी देखा। मैंने कहा शायद वो पुराना ख्याल कोई आ गया, लेकिन वो इतना क्लियर था। फिर ज़रा गौर से देखा तो मालूम हुआ कि एग्जैक्टली ये दोनों जगह नहीं, उससे मिलती हैं लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं है। पता नहीं क्या जगह। अब मैं इसी उसमें दुआ मांगे जा रहा हूँ और सोच ये रहा हूँ कि कौन सी जगह है, तो खुद ही अपने आप पता चल गया कि ये क्या जगह है। बड़ी खुशी हुई, चलो जीते जी पहुँच गए हम वहाँ, सैर कर ली। शाह साहब के पास पहुँचे, उनसे कहा कि जनाब आज दुआ मांगते हुए मैंने नमाज के बाद ये चीज़ देखी। मैं हैं क्या, तो मैंने कहा जी ये देखा, तो ज़रा दोबारा बताना मुझे। तो डिटेल्स उन्होंने पूछी तो मैंने बता दी। फिर थोड़ी देर सोच के कहने लगे ज़रा दोबारा बोलो क्या देखा था तुमने। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि असल में वो वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि अकल से बता रहा है या वाकई देखा, तो मैंने फिर डिटेल्स दे दी। तो मराकबे में चले गए, थोड़ी देर के बाद मुंह ऊपर को उठाया, कहेंगे इतनी जल्दी हुआ नहीं करता, ये इतनी जल्दी हो कैसे गया। फिर मराकबे में चले गए, थोड़ी देर के बाद फिर चेहरा ऊपर उठाया, मुझे कहने लगे तुमने दुआ मांग ली थी। मैंने कहा जी वो तीन दिन तो मैंने सब्र कर लिया कि दुआ ना मांग, दुआ मांगने से होगा क्या। चौथे दिन मैंने कहा देखते तो हैं कि होता क्या, वो बिगड़ गए। मेरे पास क्या लेने आए हो फिर तुम, जाओ भागो यहाँ से। वो डंडे वंडे खा के हमने कहा यार ये बंदा ही पागल है, तो उठ के चले आए। चलो उन्हीं दिनों कुछ मेरा एक पर्सनल काम कुछ अटका हुआ था, तो मैं अक्सर ईशा की नमाज के बाद दुआ मांगा करता था। तो ईशा की नमाज के बाद जानमाज पर बैठा हुआ था वज़ाइफ से फारिग होके, तो बाबा सईद ताजुद्दीन औलिया से मुलाकात हो गई, वो तशरीफ़ ले आए। तो मुझे बड़े शाह साहब की शक्ल दिखा के कहने लगे कि इनसे दुआ करा लो काम बन जाएगा। तो चले गए बता के। तो मैंने कहा यार ये बंदा तो पागल है, इससे दुआ क्या कराऊंगा मैं, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। वो बस उन दिनों ऐसे ही था कि तो मैं टाल गया। फिर दो तीन दिन के बाद दुआ मांग रहा था, तो फिर बाबा सईद ताजुद्दीन औलिया तशरीफ़ ले आए, फिर मुझे कहने लगे कि इनसे दुआ करा दो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं फिर टाल गया। तीसरी बार फिर तशरीफ़ लाए तो बड़ी तफसील से कहा कि ये बहुत बड़े वली अल्लाह हैं, इनसे जाके दुआ करा लो तुम्हारा काम फौरन हो जाएगा। फिर मैं मजबूर हो गया, मैंने कह दिया चलते हैं। तो ऑफिस से उठा, बड़े शाह साहब के पास चला गया। हाँ कैसे आए? मैंने कहा हजूर इधर से गुजरा था, सोचा आपको सलाम करता चलूँ। सलाम कर लिया जी, बस जाओ। मैंने दिल में कहा मैं तो पहले कह रहा था पागल है ये आदमी, उठ के आ गया। अब क्या कहता, वो बेचैनी थी। फिर चला गया मैं उनके पास। हाँ आज कैसे आए? मैंने कहा जी इधर से गुजरा था, सोचा आपसे एक कप चाय पिया जाए। कहाँ हाँ ज़रूर पियो, बड़ी मोहब्बत से कहा कहाँ ज़रूर पियो बैठो। तो बैठा के चाय बनाई दी मुझको, मैंने पी ली। देखा मैंने कप रखा है वापस, चाय पी ली। मैंने कहा जी बस जाओ, अजीब आदमी है, चलो चले गए। फिर आ गया मैं। हाँ आज कैसे आए? तो मैं चुप रहा, मैंने कहा अब तो नहीं फंसूंगा मैं इनके हाथ में। तो खुद ही बोले कोई काम है? मैंने कहा जी कहाँ, बोलो क्या काम है। तो मैंने कहा जी वो काम कर बताने से पहले मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे कि मैं खुद नहीं आया, एक बाबा सईद ताजुद्दीन औलिया हैं, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, घर पे तशरीफ लाए थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके पास हाजिर हो जाऊँ और आपसे दुआ के लिए कह दूँ, और अगर आप दुआ कर देंगे तो काम हो जाएगा। वो बिगड़ गए, आंखें उबल के इतनी मोटी बाहर को आई। वो कौन होता किसी के राज खोलने वाला, इसको तो मैं सीधा करूंगा आज रात को। मैं चलो शुक्र है इन दोनों के दरमियान ही है लड़ाई, मैं बच गया अब। तो थोड़ी देर में कूल डाउन हो गए, तो मुझे कहने लगे अच्छा ऐसा करो तुम आज तो नहीं फला दिन बताया है, वो जो मैं बताऊंगा नहीं आपसे, और इतने बजे शाम को आ जाना, लेकिन टाइम का ख्याल कर लेना कि बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगा। तो मैं गया तो आ गए मेरे जी, तो घड़ी अपने हाथ से उतार के उसको सामने रख लिया कि नज़र रहे उस पर। तो मुझसे और बातें करने लगे, जो ही वो टाइम हुआ जो कहा था मुझसे, घड़ी पे नज़र डाली तो मुझे कहने लगे ये लफ्ज़ पढ़ लिया करो। वो फिर वैसे ही था एक लफ्ज़। मैंने कह दी वो ये लफ्ज़ क्या करेगा, हाँ ऐसा नहीं कहो। अच्छा सॉरी। तो मैंने कहा ये लफ्ज़ पढ़ने से कैश हासिल हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। मैंने कहा जी इससे करामात हासिल हो जाती? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। मैंने कहा जी इससे सैर हो जाएगी? बिल्कुल होगी। अब मैं जो काम कहूँ इससे होगा? हाँ होगा। मैंने दिल में कहा कि ये लफ्ज है क्या जिससे होगा, सच्ची बात है पता था नहीं। हम तो यही समझते तस्बी फेरने से आदमी बड़ा होता, हमको क्या पता था कि तस्बी से तो कुछ भी नहीं बनता। तो हमने कहा कि ठीक है। तो मैंने कहा जी कितनी बार पढ़ना है, कि जोहर के बाद इतनी हजार मरतबा, बड़ी लंबी तादाद। तो मैं तो वैश खा के गिरने वाला हो गया कि है इतनी। तो मैंने कहा जी इसका जो पहला दौर है वो बनेगा 100 महीने का, तो उसके बाद इसकी तादाद रिड्यूस होकर 1/4 रह जाएगी, फिर वो पढ़ते रहना उम्र तक, तो तुम इसका दौर मुकम्मल कर लोगे। तो मैंने कहा जी टाइम कितना लगेगा, कि तुम्हारा तो मैं नहीं कह सकता कितना लगेगा, अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे 15 मिनट लगेंगे। इतनी हजार मरतबा 15 मिनट, हाँ 15 मिनट लगेंगे, तो मैं पढ़ के दिखा देता। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, अगर इन्हें 15 मिनट लगेंगे मुझे 20 मिनट लग जाएंगे, उसको क्या होगा। तो बड़े इत्मीनान से दफ्तर वालों से मैंने कहा, जिन उनको भी हैरत हुई, मैं जिंदगी में पहली बार उठ के भागा दफ्तर से। मैंने कहा यार जोहर की नमाज मैं घर पे पढ़ूंगा, तो फिर मैं आता हूँ नमाज पढ़ के। तो जोहर की नमाज पढ़ी, उसके बाद तस्बीह उठाई, और चूंकि तादाद ज़्यादा थी तो अनायतुल्ला से जाके मैं वो टिक टिक वाली तस्बीह लेके आया, पढ़नी शुरू की। पढ़ते पढ़ते असर की नमाज गई, तो जब वो मगरिब की अजान हो रही थी तो वो मुकम्मल हुई तादाद। मैंने कहा लो पहली बरकत तो इस लफ्ज़ की ये देखी, अब नौकरी गई, नौकरी छोड़ के घर बैठूंगा तो तस्बीह पढ़ूंगा, वरना तो पढ़ी नहीं जाएगी। गवर्नमेंट कहाँ मुझको जोहर तक की नमाज तक की नौकरी कराएगी, ये तो बुरी। खैर वो अल्लाह ताला का कर्म ये हो गया, छोड़ी नहीं मैंने, पढ़ता रहा ज़बरदस्ती। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम घटते घटते 1.5 घंटा हो गया, फिर सवा, फिर एक, आखिर पे 45 मिनट पे जाके मैं टिक गया। तो 45 मिनट में वो तादाद मुकम्मल हो जाती थी। लेकिन ये हो गया कि 14-15 दिन के बाद जो जापानी तस्बीह है मेरी, वो उसके गियर्स घिस जाते हैं, रफ्तार तेज़ होती पढ़ने की। लेकिन अगर ताइवानी हो तो वो एक दिन नहीं निकालती, उसके गियर ही घिस जाते हैं। तो ठीक 2.5 साल के बाद कष्ट जारी हो गया, फिर दूसरी चीज़ें मिली। अब लोग शाह साहब के पास आ रहे थे गुज़श्ता 15-20 साल से, सडनली उन्होंने अनाउंस कर दिया एक दिन लोगों के दरमियान बैठे बैठे कि भाई मैंने अपनी जेब सरफराज को दे दी आज से। वो जेलेसिस पैदा हो गया, फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, बैठे बैठे क्या सूझी, तो एकदम लोगों से कहने लगे कि भाई ये सरफराज तो मेरा बेटा है। आखिर पे एक दिन कहने लगे कि मेरे मुर्शद के भी एक ही खलीफा थे और मेरा भी एक ही खलीफा है, वो ये बैठा, तो यूँ खिलाफत अदा कर दी। लेकिन फिर नतीजा ये हुआ कि चारों तरफ से लोग जो थे वो मेरे खिलाफ शुरू हो गए, और शाह साहब को भरना शुरू कर दिया उन्होंने। तो फकीर आदमी थे, कहाँ किसी के चक्रों में आते हैं। तो नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ये थोड़ा सा आप उसको इसकी करेक्शन कर लीजिए। देखिए बात यह है कि इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि यहाँ आप तशरीफ रखे हुए हैं, तो एक आदमी आए और दरवाज़ा खोले, आपसे कहे शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं, और कहे सब मेरे लायक को खिदमत, और चला जाए। तो ये रोज़ आपके साथ होने लगे कि बंदा आए दरवाज़ा खोले बड़े अदब से सलाम आपको करे और चला जाए। तो कुछ अर्से के बाद आप मजबूर हो जाएंगे उससे ये पूछने के लिए कि भाई क्या कोई काम है आपको मुझसे। तो पलट के गए नहीं कि मुझे आपसे क्या है, मैं तो सिर्फ आपकी मोहब्बत में आता हूँ, सलाम करके चला जाता हूँ। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? फिर एक दिन उससे इस पार करके पूछेंगे काम हो तो बता दो, वो फिर वही जवाब दे के नहीं जनाब मैं तो सिर्फ आपकी ज्यारत करने आता हूँ, सलाम करता हूँ चला जाता हूँ, आपसे मोहब्बत है मुझे। तो फिर होगा क्या आपका रिएक्शन, कि आप घर वालों से कहेंगे कि भाई इस आदमी का ज़रा ख्याल रखना, इसको कोई ज़रूरत हो तो इसका ख्याल रखा करो, इसको दे। एक मिसाल तो ये है। दूसरी मिसाल ये है कि एक आदमी आए अभी दरवाज़ा खोले, अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, वालेकुम अस्सलाम, बस जी सलाम करने आया था, ज़रा 10 रुपये तो दीजिए साहब। फिर आ जाए आपके पास अगले दिन, सलाम करे जी सलाम करने आया था, ज़रा 20 रुपये तो दीजिएगा। तो आप उससे 4वीं 5वीं मरतबा चिढ़ जाएंगे कि यार इसने क्या मजाक बनाया हुआ, मुँह उठाए चला। तो रब ताला के साथ अगर आप उसको इसलिए याद करें कि आप उससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और इसलिए उसकी इबादत करें कि वो आपका रब है और लायक इबादत है, तो वो आपकी ज़रूरियात का खुद ख्याल करेगा। और अगर आपने इस नियत के साथ उसकी इबादत की कि अच्छा मैं ये नमाज़ पढ़ लूँ ताकि मेरी फ़लाँ हाजत रवा हो जाए, मैं ये वजीफ़ा कर लूँ कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए, तो काम तो हो जाएगा, लेकिन रब ना मिला, क्योंकि आपने तो मजदूरी की, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं ये इबादत करूँगा तो मेरा ये काम कर देना। आपने इबादत कर ली, उसने वो काम कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा हो गया। तो वो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि उसकी इबादत कीजिए इस नियत से नहीं कि मेरी फ़लाँ हाजत जो है वो पूरी हो जाए, मेरा फ़लाँ मुश्किल ख़त्म हो जाए, बस उसकी इबादत कीजिए कि वो लायक इबादत है और वो आपका रब है, तो वो आपको लुक आफ्टर करेगा पूरी तरह। इसके अंदर ट्रिक यही है। वो जो लफ्ज़ जो था जो नमाज वजू के वक्त पढ़ना था, वो तो बाद में बहुत अरसे के बाद शिक्षा था हमने डिस्क्लोज कर दिया मुझे कि वो इसमें आज़म था असल में। तो बाद में उन्होंने बताया कि मियाँ तुम्हारी तो शक्ल मुझे बहुत अरसा पहले दिखाई गई थी कि तुम्हारा हिस्सा मेरे पास है, तो मैं तो इंतज़ार में था कि तुम कब आओ तो मैं तुम्हें दूँ, तो इसलिए छूटते ही मैंने तुम्हें वो दे दिया, वो तुमने ज़ाया कर दिया। हमने कह दी मुझे क्या लेना था इसमें आदम से, उसके काम थोड़ी कोई कराने, तो मैं उसको इस्तेमाल करता उसकी कुव्वत को और काम हो जाते, वो अल्लाह ने अच्छा ही किया जो वो किया। उसमें यह है कि कुछ ऐसी इबादत हैं, कुछ ऐसी तस्बीहात हैं जिसके बाद में मना कर देता हूँ कि इसके बाद दुआ ना मांगिएगा, नमाज के बाद मांगिए दुआ, रूटीन में जो मांगते हैं, लेकिन तस्बीह पढ़ने के बाद दुआ ना मांगिए। उसकी वजह ये होती है कि वो मजदूरी की शक्ल इख्तियार न करने पाए, इबादत रह जाए। दुआ तो मांगनी चाहिए और पुरजोर तरीके पे दुआ मांगनी चाहिए। अब ये और बात है कि आदमी दुआ में मांगे क्या, कि वो उससे ये कह दे कि या अल्लाह ये कल क्रिकेट का बॉल लगा था मेरे सर में दर्द हो रही है दूर दूर कर दे, लिखते हुए पेन की निब चुप गई मेरी उंगली में दर्द हो रही है दूर कर दे, या वो बेटा मेरा स्कूल जा रहा है बस्ता हैवी है ज़रा फरिश्ता भेज वो बस्ता उठा के उसको स्कूल छोड़ाया करे, या तो यूं मांग ले उससे ऐसी चीज़ें जो उसकी नज़र में बेतहाशा हकीर हैं, या फिर वो मांग ले जिसका उसने वादा नहीं किया है, उसका फजल मांग ले उससे, उसके करम मांग ले, रहम मांग लें उससे, उसकी रहमत मांग लें, और तो और खुद उसकी अपनी ज़ात उससे मांग लें अपनी, ये तो हिम्मत की बात है। नहीं, मैं इंटरेस्टेड जो है ना वो आप उसको इंटरेस्टेड, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं था कि इसमें आज़म मुझे मिल जाए मैं दुनिया भी काम कर लूँ, वो इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इस इल्म में बहरहाल मैं इंटरेस्टेड था, इसीलिए तो लोगों के पास फिरता था। वो देखिए कुछ तो परवरदिगार ने डेस्टिनी सेट की हुई है लोगों की, और जो जिसको कहते हैं कज़ा व कदर का मामला है, और दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ है जो आदमी अपनी मेहनत से हासिल करता है, ठीक है, जिन लोगों की डेस्टिनी मुकर्रर की है रब ने या वो खुद उधर को जाएंगे मेहनत से, रब ताला को तो पता है ये किधर जाएगा बंदा, तो जहाँ से उसे इल्म मिलना है उस आदमी को उसकी शक्ल पहले से दिखा दी जाती है कि इससे आपको मिलेगा, तो आदमी जब वहाँ जाता है तो उस आदमी को तो पहले से पता होता है मैंने इसे देना है, तो वो फिर उसकी ट्रेनिंग उसी हिसाब से करना शुरू कर देता है। ये है इसलिए कि मैंने कहीं पहले भी एक बार जिक्र किया था, वो बात उन्होंने ख़ास तौर पर डिस्क्लोज नहीं की थी, वो किसी ज़िम्न में बात चली तो उनकी ज़बान से वो बात फिसल गई। मेरी वाइफ के एक रिश्तेदार हैं डॉक्टर जाहिद, उनके एक दोस्त थे हकीम रहमतुल्लाही का, जो उनके हकीम सईद के फ़क्त हैं, तो ये डॉक्टर जाहिद के साथ मेरे पास आए, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया कि मैं शाम के वक्त एक बुजुर्ग हैं उनके पास जाके बैठता हूँ। उन्होंने मुझसे ख्वाहिश का इजहार किया कि जहाँ आप जाते हैं मुझे भी ले जाइए, आ जाइए। तो हकीम रहमतुल्लाही साहब भले आदमी थे, अल्लाह ने उनको एक खूबी अता फरमाई थी, जुबान के बड़े मीठे थे, तो जिससे मिलते थे उसके दिल में घर कर जाते थे। ये खूबी अता की थी अल्लाह ने। तो बड़े शाह साहब से मिले, फिर वो उनके पास रेगुलरली जाने लगे, क्योंकि हकीम साहब काम वाम नहीं करते थे, फारिग होते थे तो दिन भर बड़े शाह साहब के पास जाके बैठ जाते थे। तो एक दो बार वहाँ मैं जब पहुँचा तो हकीम साहब बैठे थे, तो बड़े शाह साहब उन्हें कुछ सिखा रहे थे, वो कैलकुलेशंस थी। एक दो बार हुआ ये कि उन्होंने कहा जी ये सवाल है और इसका ये जवाब निकला, तो बड़े शाह साहब ने उनकी क्वेश्चन की। मेरे जहन में बड़ा घटिया ख्याल आया, बहुत ही कमीना बन था वो मेरा। तो मेरे दिल में ये आ गया कि शाह साहब ने मुझे बेटा भी बनाया हुआ है, जेब भी अता की हुई और मुझे खिलाफत भी अता की, तो मुझे तो एक लफ्ज़ बता के टरखा दिया है और हकीम साहब को देखिए ये तमाम हिसाब किताब सिखा रहे हैं। बोला नहीं एहतराम के मारे से मुर्शिद ने। फिर एक बार उन्हें देखा, फिर यही ख्याल दिमाग में आ गया। तीसरी बार जब ख्याल आया तो मेरा ख्याल है कि बड़े शाह साहब ने रीड किया कि मैं यूँ सोच रहा हूँ। तो जब हकीम साहब उठ के चले गए तो मुझे कहने लगे कि मियाँ देखो बात यह है कि हम फ़कीर हैं, हमारे पास जो आदमी जिस नियत से जो लेने आता है हम उसको वैसा ही इल्म देते हैं। तुम्हारी शक्ल दिखा के मुझे बताया गया था कि तुम्हारा हिस्सा मेरे पास है इल्म का, तो जब तुम आए तो मैंने तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दिया। अब आगे तुम्हारी मेहनत है, किस तरह से इस पर चलते जितना चलोगे आगे बढ़ते जाओ। हकीम साहब आए थे मेरे पास इस नियत से मुझसे कोई ऐसा इल्म ले लें कि लोग इनसे सवाल पूछें तो उसका सही जवाब निकाल के ये दे दें, उससे इनको इनकम हो जाए। तो मैंने उनको वो इल्म दे दिया। लेकिन तुम्हें जो मैंने इल्म दिया है वो इल्म दुनिया में एक वक्त में सिर्फ एक आदमी के पास होता है, कभी दो आदमी के पास नहीं हुआ आज तक। तो ये कैलकुलेशन करते हैं, तुम आसमान की तरफ निगाह उठाओगे तो देख के बता दिया करोगे कहाँ पर क्या चीज़। तो मैं हंसा इस बात पर, मैंने कहा हजूर अब तो फिर दो आदमियों के पास हो गया ये इल्म एक वक्त में, कैसे? क्योंकि एक आप और एक मैं। फौरन सख्त हुआ लहजा, कहने लगे ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम इस इल्म में अपने अरूज को उस वक्त पहुँचोगे जब मुझे दफन करके 72 कदम पीछे आके दुआ करोगे, अभी अरूज को नहीं पहुँचे थे, अभी मैं जिंदा बैठा हूँ। और ये मैंने महसूस किया वाकई हुआ कि जब बड़े शाह साहब को दफन कर दिया, बड़ी तेज़ बारिश, अगस्त का महीना था, बहुत तेज़ बारिश, तो दुआ पढ़ी तो उसके बाद मुझे पता लगा कि मेरा वज़न बढ़ गया, एकदम एहसास हुआ कि बहुत वेटी हो गया हूँ। तो उसके बाद की हालात ने फिर साबित कर दिया कि वाकई। तो इस हिसाब से कह रहा हूँ कि जो इल्म मुझे उन्होंने अता फरमाया वो उनके अपने अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो वो एक वक्त में एक ही इंसान के पास है, तो इसलिए वो इल्म। वैसे पढ़ने को उन्होंने कई लोगों को बताया लेकिन एज सच इल्म नहीं था। वो बाद में जैसे बड़े शाह साहब ने फरमाया था कि अब तुम्हारी अपनी हिम्मत है कि जितना इस राह में मेहनत करते जाओगे आगे बढ़ते चले जाओगे, तो शायद मुझे एडवांटेज ये है कि मैं चेहरे से ही बेवकूफ़ दिखाई देता हूँ, यतीम दिखाई देता हूँ। तो ये जितने औलिया इकराम हैं दूसरों ने भी महसूस किया कि प्यार कर मोहब्बत कर, जब यतीमी पर तरस खाते में वो बड़े शाह साहब की ज़िंदगी ही में ये हो गया था कि मुझे लॉ लग गई थी दादा साहब के साथ, तो मैं डेली दफ्तर से फारिग होकर घर आता था कपड़े चेंज करके, तो मगरिब के फौरन बाद हाजिर हो जाया करता था दादा साहब की खिदमत में। लेकिन वो मेरी हाज़िरी, मैं तो लफंगा इंसान हूँ सच्ची बात, दुनियादार आदमी हूँ, तो मेरी कोई अच्छी सही तरीके की तो हाज़िरी होती नहीं, तो हर काम मेरा वही शैतान की तेज़ी वाला ही है। तो मैं तो जाता हूँ आधा मिनट बहुत हो गया तो पौन मिनट ले लिया, तो जाता था मैं, फातिहा पढ़ता था, कुरान पाक पढ़ता था खड़ा खड़ा, और सलाम करके चला आता था। السلام علیکم، اجازت، وہ سلسلہ چل رہا تھا، مہربانی فرماتے تھے ملاقات ہو جاتی تھی، مہربانی فرماتے تھے اپنی محفل دکھا دیا کرتے تھے داتا صاحب، جب وہ محفلیں دکھانی شروع کی، مہربانی فرمائی تو آنکھیں کھلیں کہ داتا صاحب کا مقام، وہاں کئی بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھا وہاں. تو ایک دن وہ ایک کانفرنس تھی جس کو میں چیئر کر رہا تھا گجرات میں، تو وہ بیٹھے بیٹھے کیف جاری ہو گیا، تو ملاقات ہو گئی داتا صاحب سے، فرمانے لگے کہ فوراً آ جاؤ ادھر میرے پاس. تو میں نے وہ کانفرنس ادھوری چھوڑی، ریکویسٹ کی کہ میرے کچھ ذاتی ضروری کام ہیں، تو میں میرے نمبر ٹو تھے ان کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ چیئر سنبھالیے میں جا رہا ہوں، مجھے کام ہے. تو میں بھاگا وہاں سے گجرات، اس دن چہلم تھا حضرت امام حسین کا، گھر آ کے کپڑے وغیرہ چینج کر کے گیا تو ضلع کچہری کے چوک پہ آگے کرفیو لگا ہوا تھا اور آنسو گیس کی اسمیل وہاں تک آئی، فائرنگ وائرنگ ہوئی تھی کافی. وہ میں ادھر کو ڈائیورٹ ہو گیا ایس ایس پی آفس کی طرف، وہاں سے ایک راستہ اندر جاتا ہے وہ بھی بند تھا، وہاں بلاک کیا ہوا تھا، جانا ضروری تھا، حکم تھا. تو میں نے ایس ایس پی آفس کے دروازے کے مین گیٹ کے باہر اپنی گاڑی پارک کر دی، اور اس چکر میں کھڑا ہو گیا کہ کیسے جاؤں گا. تو دو تین آدمیوں سے پوچھا، میں کہا یہ گلی میں انٹر ہو جائیں تو اندر اندر سے راستہ وہ کھلا مل جائے گا آپ کو. تو میں ادھر کو چلا گیا، آگے دو چار گلیوں میں گیا، راستہ بھول گیا، نہیں دیکھی گلیاں وہ میری، وہاں ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور اس چکر میں تھا کہ میں کروں کیا، کدھر کو جاؤں. سڈنلی پیچھے ڈھول اور گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دیں، پتہ لگا ایک جلوس آیا چادر اٹھائے ہوئے، اور میں ان کے درمیان پھنس گیا، اور اس ریلے ہی میں دھکے کھاتا ہوا داتا صاحب کی سیڑھیوں پہ پہنچ گیا. وہ آگے لاٹھی چارج ہو رہا تھا، میری تو روک نہ ہوتی رش سے، ویسے میں کھڑا ہو گیا کہ میں کیا کروں گا، اس رش میں کیسے جاؤں. پھر خیال آیا کہ حکم ہے تو ایسا کرتے ہیں، مسجد میں انٹر ہو جاتا ہوں، اس کے ذہن میں کھڑا ہو کے فاتحہ پڑھ دوں گا، حکم کی تعمیل ہو گئی، اور معذرت کر لوں گا کہ حضور وہ میری ویکنیس کا آپ کو پتا ہے، میں رش میں نہیں آ سکتا، تو معاف فرما دیجیے، یہیں سے قبول کر لیں حاضری میری. تو میں داتا صاحب کی مسجد کے ذہن میں کھڑا ہو گیا کنارے پہ آ کے، وہاں سکون تھا، فاتحہ پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھر کش جاری ہو گیا، تو داتا صاحب سے ملاقات ہو گئی. مجھے فرمانے لگی فاتحہ ختم کر کے تو لیفٹ کو چار چھ قدم چلنا آگے، تو آگے ایک اس طرح کی فینس لگی ہوگی وہ ٹوٹی ہے درمیان میں سے، اس میں سے گزرو تو مجھ تک آ جاؤ گے فوراً. فاتحہ مکمل کی تو میں چل پڑا لیفٹ، وہ چھ سات ہی قدم گیا تو واقعی وہاں وہ جیسی ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ فینس لگی ہوتی وہ لگی ہوئی تھی، اور اس میں ایک بار ٹوٹی گئی، اور وہاں ایک حوالدار کھڑا تھا پولیس کا، ٹھیک، تو اس میں سے گزرا تو حوالدار نے مجھے یہاں بازو سے پکڑ لیا، کہتا کہاں جا رہے ہیں، میں اس کو دیکھا، میں نے کہا میں داتا صاحب تک جا رہا ہوں، جلدی سے گزرے ہیں، کوئی دیکھنے نہ پایا، تو گزر گیا قدموں میں جا کھڑا ہوا. وہاں پھر محفل میں لے گئے مجھ کو دادا صاحب سے، اور نام ڈسکلوز نہیں کر سکتا میں ورنہ بتا دیتا آپ کو، بہت بڑے لوگ بیٹھے تھے. تو دادا صاحب نے اتنا بڑا پرشن تھا وہ منگوایا، اس میں دستار رکھی ہوئی تھی، اٹھا کے اپنے بچے مبارک سے سر پہ رکھ دی، آج سے تمہیں خلافت مل گئی. اگلے سال میں وہاں حاضر ہوا تو اجازت دے دی کا بھی سے اناؤنس کر دو. تو یوں یہ ہو گیا، یوں سلسلہ ہے، اور ویسے جنیدیا میں خلافت مل گئی. پھر وہ کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھیں، خلافت ملنے کے بعد کچھ پڑھائیاں آتا ہوں، لیکن وہ الفاظ ایسے تھے، اس میں ایک پڑھائی ایسی تھی کہ کسی سلسلے میں میرے علم میں نہیں تھی کہ وہ لفظ اس طرح سے پڑھا جاتا ہو. پڑھا جاتا ہے اس سے قادریہ میں بھی، بہت لچکیہ میں پڑھا جاتا ہے، سہروردیہ میں پڑھا جاتا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ کیا بتا ہے، تو وہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہے. پھر ایک اور چینج آئی کہ میرے اندر छुपाने की बहुत ज़्यादा वो पैदा हो गई अर्ज, तो मैं बड़े शिद्दत से इस चीज़ का मुखालिफ हो गया कि किसी तरह भी ज़ाहिर किया जाए कि आदमी इबादत भी करता है, नमाज भी पढ़ता है। अब जब वो मैं रिफ्रेशर कोर्स में से गुजारा गया डंडे वंडे खाने, तो लंदन जा बैठा, वो 3 साल तक वहीं बैठा रहा। उस दौरान वहाँ इसका इंकशाफ हो गया था, तो पता लगा कि वो असल में लव जो था ओरिजिनल, जिसमें परेशान रहता था, वो सिलसिला जुनैदिया का है, जिसको मैं समझ नहीं पा रहा था क्योंकि कहीं पढ़ने में मिला नहीं था मुझे, तो वहाँ जाके उसका इंकशाफ हो गया। इसी तरह ये सिलसिला जुनैदिया ही की बात है कि बड़ी शिद्दत से छुपाया जाए हर चीज़ को, तो इंसान कहीं अल्लाह का नाम भी पुकारता है। तो ये इतिहास सिलसिला जुनैदिया की, तो वहाँ जाके उसका इंकशाफ हो गया बहुत तेज़ खुल गई थी। तो ये सिलसिला खिलाफत का दूसरी का यहाँ से हो गया, तो तीसरी खिलाफत पे फाइनली मुझे हजरत में अमीर साहब के दस्ते मुबारक अता हो गई सिलसिला कादरिया में, वो वहाँ से हो गया। बहुत लोगों को अता किए, हजरत मियाँ अमीर साहब ने भी अता किया। तो मैंने खुद ही एक्सप्लेन किया कि कुछ पढ़ाई आता हुई जो मुझे समझ नहीं आती थी कि लफ्ज क्या है, क्योंकि वो लफ्ज पढ़े जाते हैं दूसरे सिलसिले में, वो मुझे मालूम था, लेकिन वो अकेले नहीं पढ़े जाते, उनके साथ कुछ और मिला हुआ होता है। लेकिन वो अता हुई तो वो समझ में नहीं आती थी कि क्या है, पढ़ता रहा क्योंकि अता हुई थी। तो वो कई सालों के बाद जाके वो लंदन में खुल गया था मेरे को। तो अब वो असास तो उसी इल्म ने प्रोवाइड की जो क़िबला बड़े शाह था, इसलिए मैं अपने आप को साबरी कहता हूँ। तो जो पहली खिलाफत अता हुई, असास उसी ने बनाई है सारी इल्म की, बाकी चीज़ें जो थी वो इजाफी जीनत का सबब बन गई। लेकिन मैं इसलिए अपने आप को साबरी ही कहता हूँ, अगर कभी कहना पड़ जाए। अव्वल तो मैं नहीं कहता, मैं तो अपने आप को कुछ भी नहीं कहता, हत्ता कि इंसान कहने को तैयार नहीं है। लेकिन असास उसी इल्म ने प्रोवाइड की जो जनाब क़िबला बड़े शाह साहब ने अता फरमाया। एक चीज़ याद रखिए, आलम में और फ़कीर में एक ही फ़र्क है, इल्म दोनों के पास वही है, आलम के पास भी वही इल्म है और फ़कीर के पास भी वही इल्म, फ़र्क सिर्फ एक है। आलम ये बताता है कि क्या चीज़ क्या है, व्हाट इज़ व्हाट, लेकिन फ़कीर उस पर अमल करना सिखाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में फ़कीर ये बताता है व्हाट इज़ व्हाट एंड हाउ टू अचीव इट, आलिम सिर्फ इतना बताता है व्हाट इज़ व्हाट। मिसाल मैं देता हूँ, एक साहब थे जिन्होंने ज़िंदगी भर कभी तहज्जुद भी मिस नहीं, और जैसे आम तौर पे होता है कि शैतान मुख्तलिफ तरीक़ों से वरगलाता है, उनके दिल में भी ये एक फ़ख्र का एहसास डाल दिया कि मुझसे कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, तहज्जुद भी मिस नहीं हुई। तो जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह साहब के पास वो साहब तशरीफ़ लाए, बैठे थे और उनसे जिक्र कर रहे थे, और उसी जिक्र में उन्होंने इजहार इत्तफ़ाक़ के तौर पर ये बात बयान कर दी कि साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझ पर बड़ा मेहरबान है कि उसकी रहमत के सदक़े मैंने आज तक कोई नमाज कज़ा नहीं की और कभी तहज्जुद भी मिस नहीं की। जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह साहब ये नहीं कहा कि बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ताला और तौफीक अता फरमाए आपको, आप खुश नसीब हैं कि नमाज कभी कज़ा नहीं हुई, कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा ये फरमाने लगे कि जो आपने अंगूठी पहनी है ये कब से पहनी थी आपने। उन्होंने कहा जी ये 10-11 साल का था तो किसी ने मुझे तोहफा दिया था, उस वक्त से ये मेरी उंगली में। फरमाने लगे फिर एक काम कर लें आप, इसे कटवा के उतार दीजिए, उंगलियां बड़ी हो गई थी तो वो फंसी हुई थी उंगलियाँ, और पिछली सारी नमाजों की कज़ा अदा कर दीजिए क्योंकि आपकी नमाजें नहीं होंगी। वो बड़े परेशान हुए कि कैसे, उन्होंने कहा जी बात यह है कि अंगूठी आपकी तंग है बहुत, जब आप वजू करते हैं तो उंगली का वो हिस्सा खुश्क रहता है आपका, तो वजू नहीं होता और बगैर वजू के नमाज अदा नहीं होती, तो इसे कटवा दीजिए और फिर वजू से सारी नमाजें अदा कर दीजिए। आलिम के और फकीर के नुक्ता नजर का ये फर्क है। तो जब आप किसी फकीर से जाके बात करेंगे तो वो आपको इंतहाई दकीक नुक्ते भी इतनी आम फहम जुबान में और रोजमर्रा की जिंदगी से मिसालें लेकर एक्सप्लेन करेगा चीज को कि वो चीज आपके लिए बिल्कुल आसान होती समझिए। तो फकीर है, ही मेक्स थिंग्स लुक वेरी सिंपल एंड ईजी, ये उसकी इल्म का। और ये सिर्फ फकीरी पर नहीं, इवन दुनियावी जिंदगी के अंदर शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा फन आसान और मुख्तसर खत लिखना है। फिर एक और राइटर ने यह बात कही जिसका नाम से निकल गया मेरे, कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम आसान तहरीर है। जितना बड़ा आलिम होगा, जितना ज्यादा इल्म रखने वाला इंसान होगा, वो उतनी ही आसान जुबान में गुफ्तगू आपसे करेगा। ये तो है दुनियावी चीज, किताब अल्लाह भी यही कहती है, उसकी समझ में आएगा और जो जो उसका लेवल ऊपर जाता जाएगा कुरान के मायने वो गहराई से समझने लगेगा कि रब ने गुफ्तगू ही इतनी आसान की है। और फिर कुरान को अगर आप देखें तो कुरान के अंदर दो चीज़ों से, जिसको हम कहते हैं कैरेट एंड स्टिक, है ना, मैनेजमेंट की हमारी आपने एमबीए में पढ़ी होगी कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, जो कैरेट एंड स्टिक मेथड है कुरान में वो यूज़ हुआ है। रब ने अजाब से डराया है और मिसालों से तरगीब दी है, और अजाब से भी जो डराया वो भी मिसालों से डराया, मुख्तलिफ कौमों की ऊपर जो अजाब नाजिल हुए उनकी कहानियां बयान की, बराह रास्त उसने कहीं नसीहत नहीं की इस तरह। और जितनी मिसालें हैं वो इसी दुनियावी जिंदगी से मुताल्लिक। तो फकीर जब भी गुफ्तगू करेगा वो आपसे इंतहाई सहल गुफ्तगू करेगा और आपको मिसालें हमेशा रोजमर्रा की जिंदगी से देगा। इसी तरह जो आलिम है दुनियावी इल्म रखने वाला, अगर उसके पास बहुत इल्म है तो बहुत सादा गुफ्तगू आपसे करेगा जो फौरन दिमाग में उतरती चली जाती। देखिए कशु महजूब तो आपके हाथ लग गई इसलिए आपको अंदाजा हो गया उसका। अगर आपने हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह साहब की कोई किताब पढ़ी होती तो उसका एक लफ्ज भी हमारी समझ में नहीं आएगा, एक लफ्ज नहीं हम समझ सकते। वजह यह है कि हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह साहब को एक इम्तियाज हासिल है औलिया इकराम में कि ये वो वली अल्लाह हैं जिन्होंने तमाम औलिया इकराम के मुकाबले से सबसे ज्यादा उस्तादों से इक्तसाब इल्म किया है। आपने शायद 110 फकीरों से इक्तसाब इल्म किया था, इल्म बहुत वसी था, आला पाए का था। तो आपके जितने शागिर्द थे वो सब के सब आलिम थे, जिस तरह मौलाना रोम के शागिर्द आलिम हुआ करते थे, आम आदमी कभी नहीं हुआ इनका शागिर्द। इसी तरह हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह साहब के तमाम शागिर्द औलिया इकराम थे, तो वो एडवांस स्टडी वहाँ से हासिल करते थे हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह साहब। तो हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह साहब की लिखी हुई तमाम किताबें थी ही उस लेवल के आलमों के लिए। ठीक, तो इल्म के लोअर दर्जे का आदमी उस हायर दर्जे के इल्म को नहीं समझ सकेगा, राइट। इसी तरह कशफुल महजूब के बारे में एक चीज़ खुद दाता साहब ने फरमाई कि जिस इंसान का कोई मुर्शद नहीं ये किताब उसकी मुर्शद है। यही एक जुमला आपकी बात के जवाब के लिए काफ़ी है, कि वो किताब तो असल में उन्होंने उन लोगों के लिए लिखी जो इस राह के राही हैं, लेकिन उनका गाइड नहीं है, तो वो गाइडेंस इस किताब से ले लें। तो एक स्पेसिफिक पर्पस से वो किताब लिखी गई। ये बिल्कुल ऐसा है कि प्राइमरी स्कूल के लेवल की केमिस्ट्री की किताब पढ़ने वाला बच्चा अगर MSc के लेवल की केमिस्ट्री की किताब को पढ़ेगा तो उसके पल्ले नहीं पड़ेगी कोई बात, राइट। अगर MSc के लेवल की केमिस्ट्री की किताब बहुत आसान लिखी गई तो एट बेस्ट व्हाट विल हैपन, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल का स्टूडेंट उसको आसानी से समझ लेगा। तो उतनी आसान किताब के लिए भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हों। प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट फिर भी MSc की केमिस्ट्री की किताब नहीं समझ सकता। तो फॉल्ट MSc की केमिस्ट्री की किताब का नहीं है, उस बच्चे का है जो बहुत अर्ली उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो कशफुल महजूब वाकईतन बड़ी आसान है, इतनी आसान के बाद कर उसकी सादगी खलने लगती है कि इससे आगे भी बताया होता दाता साहब आपने, इंसान वहाँ ये उलझने लगता है बात का, इससे आगे बता सकते थे आप बता देते, क्या ये लिखा नहीं वहाँ छुपा गया आप। तो पहले आप जो इल्म है, इल्म को हमेशा जीना इस्तेमाल उसको सीखना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आप आगे जाइए तो सीखते जाएंगे। आज यहाँ अगर मैं गुफ्तगु शुरू कर दूँ सिद्धत मुंतहा पर तो आपके लिए दुशवार हो जाएगा, और जो अशफाक साहब ने फरमाया था कि मैं इतनी आसान ज़बान में गुफ्तगु नहीं कर सकता जितनी तुम करते हो, तो ये जो इतनी आसान आपको लग रही है ये मुश्किल अभी हो जाएगी दो मिनट के अंदर अंदर, इसलिए कि वो एक गैप है ना जो अभी फिलअप नहीं हुआ। तो मैं उससे आगे चला जाऊँगा, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ही मकाम हैरत होगा। तो मकाम हैरत से जब आगे चलूँगा मैं, तो अब यहाँ से मकाम हैरत तक का जो गैप है उसको फिलअप नहीं किया जा सकता, तो समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हम वहाँ जा पहुँचेंगे तो लाहूत हाहूत जाहूत सब कवर होते जाएंगे आसानी के साथ। तो मकाम हैरत से या मकाम लाहूत पर चले जाएंगे आसानी के साथ, कोई दिक्कत नहीं। शुजा साहब अल्लाह से दुआ फरमाइए कि परवरदिगार मेरे मामलात ऐसे कर दे कि मैं 24 घंटे आप लोगों की खिदमत कर सकूँ। फिलहाल तो रब मुझे दौड़ाए फिर रहा है, जब जी चाहता है मुझको UK में बिठा देता, जब जी चाहता कराची ले जा बिठाता। अल्हम्दुलिल्लाह तंगी नहीं है, मैं सहूलतें देता है, लेकिन मेरे एक जगह न टिकने से ये कभी मुझे दिल में हल्का सा ख्याल भी नहीं आया कि मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती, मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं या मुझे दौड़ लगाना पड़ती है, वो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की इनायत है, वो मेरे दोस्त की अता करदा चीज़ें हैं, तो दोस्त की हर चीज़ अता की चीज़ जो है वो हंसी खुशी काबिल कबूल होती है। सिर्फ ये है कि ये खिदमत के उसमें टाइम होता नहीं अभी जी, नहीं नहीं बिल्कुल हक बनता है, लेकिन किस्सा ये है कि अभी आप देखिए मैं जो फ्राइडे लेट इवनिंग आता हूँ वापस, अब सैटरडे मॉर्निंग को सच्ची बात क्योंकि मैं सोता हूँ फजर की नमाज के बाद, तो मुझे लालच होती है कि मैं थोड़ा सा सो जाऊँ, तो 8:30-9 बजे उठा, उसके बाद रिश्तेदार अजीज़ मिलने वाले होते हैं तो 12:30 मेरे नमाज का टाइम शुरू हो जाता है। अब वो जोहर की नमाज मेरी 1.5 घंटे की है, उससे फारिग हुआ तो दुआ का सेशन शुरू हो गया, वहाँ से रात को वापस आता हूँ तो अल्लाह के ठेंटे यूँ दिखाई देते हैं कि फैमिली का हक है मेरे ऊपर, तो अपनी फैमिली को लेके मैं बाहर निकल जाता हूँ, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा इनको मैं टाइम दे दूँ, वहाँ से वापस आके फिर अपनी इबादत पे लग गए। अगले दिन संडे होता है तो पहला विजिटर 7:30 बजे आता, तो वो शुरू हुआ हुआ मेरे रात 1:30-1:30 बज जाता टाइम किया। अगले दिन फिर उठ के मैं कराची चला जाता हूँ नौकरी से, ये हवाल है। अब कहीं टाइम है नहीं, मुझे तो अपनी अपनी जात के लिए अब टाइम नहीं मिलता। पहले दुनियावी काम को तो छोड़ दीजिए कि हेयर कट कराना है, बात कर दो दो महीने गुजर जाते हैं, हेयर कट नहीं करवा पाता कि टाइम नहीं है। जूता खरीदना है तो वो टाइम नहीं है, क्या किया जाए। लेकिन एक टाइम बड़ा अहम है जो मुझे मिलना चाहिए, वो ये है कि मैं घंटा डेढ़ घंटा अपनी जात में अगर मैं गुम हो के गुफ्तगू कर लूँ, जिसको आसान लफ्ज़ों में आप गौर व फिक्र कह सकते, तो उससे मेरी एडवांसमेंट में मुझे बड़ी मदद मिलती है। वो बिल्कुल नहीं है और वो चीज़ तंग करती है। अब वो जो अलहदा से 10 मिनट हैं वो निकलेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ से उसमें ये है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन मैं जब कायम करना चाहता हूँ कर नहीं पाता। एक ये सुन्नत भी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने टाइम को, आपके यहाँ टाइम मैनेजमेंट बड़ी अच्छी किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अपने टाइम को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था 24 घंटे को। उसका एक हिस्सा जो था वो मुलाकातियों के लिए और कारोबार ममलकत के लिए मखसूस था, दूसरा हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फैमिली लाइफ के लिए मख्तस किया हुआ था, और तीसरा हिस्सा आपने इबादत और आराम के लिए मख्तस किया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फेल ऐसा नहीं जो उम्मत के लिए मिसाल ना हो और जिसकी पैरवी करना बाइस बरकत ना हो। तो अगर हम भी अपनी टाइम मैनेजमेंट कर लें तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। अब मैं करना चाहता हूँ टाइम मैनेजमेंट, लेकिन वो मेरे प्लान्स आमतौर पर मेरे दोस्त अहबाब के लिए डिफीट हो जाते हैं। वो जो मेरे ऊपर प्रेशर बिल्डअप करते हैं तो मुझे फिर ओवरलैप करनी पड़ती हैं एक्टिविटीज़। मैं उनको वाटर टाइट कंपार्टमेंट के अंदर जो रख के डील करना चाहता हूँ कि जो टाइम जिसके लिए मखसूस है सिर्फ वही काम उसमें किया जाए, तो उससे हर एक को सहूलत हो जाएगी। लेकिन दोस्त अहबाब उसमें करने नहीं देते। अब वो जो कुछ मेरे साथ ऊपर जाके बीतनी है मैं उससे ही लरसता रहता हूँ। देखिए इट्स अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी, फ़र्ज की पुछगिछ पहले होगी, वाजिब की उसके बाद और नफल की उसके बाद। हम ये कभी नहीं कर सकते कि फ़र्ज नमाज तो कज़ा हो जाने दें लेकिन सुन्नतों और नवाफिल पर बहुत ज़ोर दे दें, क्योंकि रब ताला के यहाँ पुछगिछ सबसे पहले फ़र्ज की होगी। इसी तरह जो आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली आपकी लायबिलिटी है, उसके आप पर हकूक़ हैं, तो रब के यहाँ जब हम जाएंगे तो हमसे उसकी पुछगिछ होगी। डंडे छंटे उस पर पड़ेंगे कि आपकी फैमिली के आप पर जो हकूक थे वो आपने अदा किए या नहीं किए। तो ये जो इबादत हैं ये तो नफली इबादत हैं, तो पहले तो पुछगिछ होगी फ़र्ज के बारे में हमसे। तो अगर फ़र्ज में कोताही होने लगे तो उसके तो फिर गर्म सलाखें टखनों पर पड़ेंगी शाह साहब। ये बड़ी अजीब सी बात है जो हमें हमारे जहन में क्लियर होनी चाहिए कि फ़र्ज की पुछगिछ पहले हो जाएगी, लेकिन अजीब चीज़ है कि हम लोग नफली इबादत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो है हमारी और नफली कामों पर, लेकिन फ़र्ज को हम उतना ही गैर अहम समझ के इग्नोर कर जाते हैं। तो वो मेरी लाइफ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, दूसरों के लिए तो ज़्यादा है कि उसमें पिस जाता हूँ। देखिए अजीब इत्तेफाक ये है कि अभी हमने फ़र्ज और नफल की बात कर डाली, वाजिब की बात। आपका सवाल एग्जैक्टली वही है। अब एक प्रॉब्लम देखिए हमारे यहाँ, बल्कि एक हमारे 1976-77 में मेरे बॉस थे जो एयरफोर्स से ट्रांसफ़र होके हमारे यहाँ आए हुए थे, हमारे एक कोलीग थे वो कहीं फॉरेन टूर पर गए, और इत्तेफाक ही था उनकी ज़िंदगी का शायद वो पहला फॉरेन ट्रिप था। उन्होंने कहा नहीं लेकिन उनकी गुफ्तगू से हमें अंदाज़ा होता था कि ज़िंदगी में पहली बार कहीं फॉरेन कंट्री में कॉन्फ्रेंस पे गए।
तो वापस तशरीफ लाए तो हमारी मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में हमारे बॉस ने उनसे ऐसे कर्ट की, उनसे कहीं पूछा कि कहीं कैसा रहा आपका विजिट, डिड यू एंजॉय? तो वो बार बार एक ही चीज़ को एम्फोसाइज कर रहे थे मुझसे, ही वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ ओवर एम्फोसाइजिंग कि साहब और तो बाकी सब चीज़ें ठीक थी लेकिन हलाल गोश्त नहीं मिलता था, तो वो बड़ी तकलीफ हुई मुझे वहाँ मछली रोज़ खाना पड़ता। तो बॉस हमारे ज़रा क्योंकि एयरफोर्स के थे, फाइटर पायलट थे बुनियादी तौर पर, तो एक तो एग्रेसिव थे, होना भी चाहिए भाई नहीं करूँ, और दूसरा स्टेप फॉरवर्ड बहुत थे, लगी लिपटी नहीं रखते थे। तो जब उन्होंने दूसरी तीसरी बार यही जुमला कहा तो कह लेंगे हाँ ये दिक्कत तो हमें सबको आती है कि हम हलाल गोश्त के अलावा कोई गोश्त खा नहीं सकते। झूठ बोलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी का हक मार लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गोश्त के बारे में मोहतात जरूर रहना चाहिए। वो साहब बेचारे चुप हो गए, शर्मिंदा हो गए। ये बात 76-77 की है गलबन। हमारे यहाँ ये एक अजीब प्रॉब्लम है, आप देखिए अभी नमाज चली जाए कोई बात नहीं, मेरा बॉस मुझे बुला लेगा, मैं फ़र्ज़ नमाज को कज़ा कर जाऊँगा, इट वॉन्ट बॉदर मी इट ऑल, या और इसी तरह से। लेकिन मैं बड़ा पर्टिकुलर हूँगा नफली रोज़े के बारे में, ये थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट का है, ये सिर्फ इबादत के मामले में नहीं, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ऐसे ही है कि अहम चीज़ों को हम तवज्जो नहीं देते, हम कॉस्मेटिक चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं। तो वो उन साहब ने, अब मुझे नहीं पता उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है जो उन्होंने नेगेट किया इसको, लेकिन अगर इस अंदाज में किया है कि भाइयों पहले फ़र्ज़ इबादत पर जो जिनकी पुचकी छूनी है स्टेट वे आपसे, अब ये तो ऐसा है ना कि हम नफली रोज़ा रख के, मैं अपनी बात मैं कर रहा हूँ कि मैं उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करूँ कि अगर मैं किसी यतीम का माल हड़प कर गया हूँ तो उसका गुनाह बहुत है और उसकी सज़ा भी बहुत है, रखती हैं पुचकी तो भी, किसी पड़ोसी को मैंने तंग कर दिया है तो उसके छंटे पड़ेंगे वहाँ, माँ बाप की नाफरमानी मैं कर गया हूँ, बीवी के हकूक़ मैं अदा नहीं कर सका, बीवी के ज़िम्न में जो मुझ पर फ़राइज़ हैं वो मैं अदा नहीं कर सका, औलाद के ज़िम्न में जो हकूक़ और फ़राइज़ दोनों मैं नहीं अदा कर सका, इनकी पुचकी छोकी बात है, मैंने अगर अमानत में खयानत कर डाली है ज़ाती मफाद के लिए, ये जानते हुए भी कि मेरे खामोश रहने से सच छुप जाएगा और आपको नुकसान होगा, मैं सच को गोल कर गया, चलिए झूठ नहीं बोला तो सच को गोल कर गया जिससे आपको नुकसान पहुंच गया, इसकी पुचकी छुटा दी कड़ी सज़ा नहीं। अब वो तो सब मैं करता चला जाऊं और नफली इबादात पे बेतहाशा अगर मेरा ज़ोर है कि 27 रजब का रोज़ा मुझसे मिस ना होने पाए तो फिर वही गलत रवैया होगा मेरा। तो पहले मुझे उन तमाम चीज़ों का ख्याल कर लेना चाहिए जिसकी रोज़े क़यामत मुझसे पुचकी छूना, सॉरी यानी वो उनको ये चाहिए कि इस तरह से एक्सप्लेन कर दें, जब वो उसे नेगेट कर रहे हैं तो उसे एक्सप्लेन कर दें कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि 27 रजब का रोज़ा कोई लाजमी नहीं है, पहले आप उन चीज़ों पर तवज्जो दे दीजिए जिसके बारे में रब ताला ने हमसे रोज़े हिसाब पूछगिछ फरमाना है, ताकि उससे हम बच जाएँ, तो फिर इसे सप्लीमेंट हम करेंगे नफली इबादात के सवाब से, अपने नाम आमाल का वज़न बढ़ाएंगे दाहिनी तरफ। ये कई बार वाक़या पेश आया, वो तो कुरान में भी है कि कहीं औलाद की मोहब्बत में गुमराह ना कर दे, जहन्नम की आग में न डाल दे। तो ये इंसानी फितरत में है कि इंसान की मोहब्बत में इंसान इतना आगे बढ़ जाता है कि फिर उससे कुछ ज़्यादतियाँ हो जाती हैं और हकूकुल्ला और हकूकुल आबाद दोनों उससे मुतासर हो जाते हैं। वो तो कई एक को तंबी मिली हो गई कि इंसानी फितरत में औलाद की मोहब्बत बड़े ख़तरनाक चीज़ है, आदमी गलत तरफ चला जाता है। इसमें मेरा तो स्कूल ऑफ थॉट वो है कि हिसाब जो नमाजें जितनी कज़ा हुई हैं वो सब अदा करना होंगी, उसकी फ़र्ज जो है वो अदा करने पड़ेंगे। लेकिन अब ये है कि मुझे ये तो पता नहीं है कि मैं अगर अपनी 40-45 साल 50 साल की ज़िंदगी में नमाजें कज़ा करता चला आया और उसको 50-55 साल की उम्र से मैंने कज़ा अदा करना शुरू की, तो अब मैं कितने दिन जिंदा रह लूँगा जो पूरी हो जाएंगी। तो उसका एक बहुत अच्छा बचाव है कि बड़े सिदक दिल से, ये नहीं कि अल्लाह ताला को चक्करबाजी कर ली जाए, सिदक दिल से हर नमाज के बाद दुआ ये कर ली जाए कि या परवरदिगार मुझसे वो कोताही बहुत शिद्दत से हुई, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, नमाजें कज़ा की, अब मैं खलूस दिल से सच्चे दिल से इन्हें अदा करना चाहता हूँ लेकिन अपनी उम्र का भरोसा नहीं। तो अगर मैं वो कज़ा पूरी होने से पहले तेरी तरफ लौट आऊँ तो मुझे माफ़ कर देना, रब ताला रहीम व करीम है, उस अखलास को देखते हुए वो यकीनन माफ़ फरमा देगा, क्योंकि वो माफ़ फरमाने वाला है, ये उसका अपना कहना है कि मैं माफ़ फरमाने वाला हूँ और माफ़ कर देने वालों को पसंद करता हूँ, तो माफ़ करने वाला है। लेकिन ये चक्करबाजी ना की जाए कि चलो माफ़ी मांग के जान छुड़ा लेंगे यार,